एकत्र ज्ञानोगोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञानोगोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं। ये है पॉल एस बॉयर की अमेरिकन हिस्ट्री, आइडियल्स एंड रियलिटीज, अमेरिकी इतिहास पर।
नमस्ते। हाँ, और ये कोई छोटी मोटी किताब नहीं है। अमेरिकी इतिहास का एक बहुत बड़ा कैनवस कवर करती है, प्री कोलंबियन दौर से लेकर, मतलब बिल्कुल आज तक।
बिल्कुल, लेकिन जैसा आपने कहा, ये सिर्फ तारीखों की लिस्ट नहीं है। इसकी सबसे अहम बात, और शायद इसीलिए ये आज भी इतनी प्रासंगिक है, वो ये है कि बॉयर दिखाते हैं कि कैसे अमेरिका की पूरी कहानी उसके ऊंचे आदर्शों,
जैसे आजादी, बराबरी,
हाँ, स्वतंत्रता, समानता, अवसर, और उसकी जो असलियत रही है, जैसे गुलामी, भयंकर असमानता, लगातार संघर्ष, इनके बीच एक तनाव है, एक खींचतान है, उसी से ये कहानी बुनी गई है।
अच्छा, तो मतलब अमेरिका जो बनने का दावा करता है और जो वो असल में रहा है, उसके बीच का वो जो फर्क है, वो टकराव।
हाँ, बिल्कुल।
ये समझना तो फिर आज के अमेरिकी समाज और राजनीति को समझने के लिए भी अहम हो जाता है, जहाँ इतने सारे विभाजन दिखते हैं।
बिल्कुल सही। ये किताब हमें वो नजरिया देती है जिससे हम समझ सकें कि ये टकराव नया नहीं है, ये हमेशा से रहा है। तो चलिए पहले लेखक को थोड़ा जान लें। पॉल बॉयर कौन थे ये?
हाँ, पॉल एस बॉयर, जिनका जीवन काल 1935 से 2012 तक रहा, अमेरिका के काफी माने हुए इतिहासकार थे, खासकर सांस्कृतिक और बौद्धिक इतिहास के क्षेत्र में।
जी, वो विस्कॉन्सिन मैडिसन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, और उनकी खासियत ये थी कि वो सिर्फ बड़ी राजनीतिक घटनाओं या युद्धों तक ही सीमित नहीं रहते थे।
अच्छा।
हाँ, उन्हें अमेरिकी सोच कैसे बदली, वहाँ की संस्कृति कैसे विकसित हुई, शहर कैसे बने, सामाजिक सुधार के आंदोलन कैसे चले, इन सब में गहरी रुचि थी। वो इतिहास को सिर्फ ऊपर से नहीं देखते थे।
उनकी एक और किताब का जिक्र आता है, परमाणु बम और अमेरिकी संस्कृति पर, बाय द बॉम्ब्स अर्ली लाइट। तो लगता है वो विचारों और समाज के रिश्ते को खूब समझते थे।
सही का, और वही समझ इस किताब अमेरिकन हिस्ट्री में दिखती है। उन्होंने राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सब धागों को मिलाकर एक कहानी बुनी है, और वो भी ऐसी भाषा में जो आसानी से समझ आए। वो आम लोगों के नज़रिए को, मतलब हिस्ट्री फ्रॉम बिलो को भी शामिल करते हैं।
और शायद जो 1960 के दशक में अमेरिका में बड़े बदलाव हुए, सिविल राइट्स मूवमेंट, वियतनाम युद्ध का विरोध, उन सबका भी असर उनके लेखन पर पड़ा होगा, सामाजिक न्याय को लेकर एक संवेदनशीलता।
लगता तो है, बिल्कुल। चलिए अब किताब पर आते हैं। इसका मुख्य तर्क क्या है? जैसा हमने कहा, ये घटनाओं की सूची नहीं है। बॉयर का मेन पॉइंट क्या है?
वही कि अमेरिकी इतिहास की चाबी उसके आदर्शों और उसकी हकीकत के बीच जो लगातार एक तनाव रहा है, उसी में छुपी है।
हाँ, एक तरफ वो बड़े बड़े आइडियल्स हैं, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, सबके लिए अवसर, और दूसरी तरफ क्या है? विजय, गुलामी, नस्लवाद, असमानता, अंतहीन संघर्ष।
तो ये किताब इसी सवाल का जवाब ढूंढती है कि कैसे इतने अलग अलग किस्म के आपस में लड़ते झगड़ते उपनिवेश मिलकर एक ग्लोबल सुपर पावर बन गए, और वो कौन सी ताकतें हैं, कौन से विचार हैं, कौन से संघर्ष हैं जिन्होंने अमेरिका को बनाया है और आज भी उसे परिभाषित कर रहे हैं।
बिल्कुल, और बॉयर जो है वो ग्रेट मैन थ्योरी को नहीं मानते, मतलब इतिहास सिर्फ कुछ महान लोगों ने नहीं बनाया।
हाँ, वो दिखाते हैं कि रास्ता तो असल में अलग अलग क्षेत्रों, जैसे नॉर्थ और साउथ, सामाजिक वर्गों, अमीर और मजदूर, नस्लीय समूहों और विचारधाराओं जैसे फेडरल पावर बनाम स्टेट्स राइट्स के बीच की रस्साकशी से बना है।
सही कहा, ये कहानी सिर्फ राष्ट्रपतियों या जनरलों की नहीं है, ये उन गुलामों की भी है जिन्होंने आज़ादी चाही, उन अप्रवासी मजदूरों की है जिन्होंने देश को बनाया, उन महिला कार्यकर्ताओं की है जो बराबरी के लिए लड़ीं, और उन मूल अमेरिकियों की भी है जिन्होंने प्रतिरोध किया। ये एक तरह से एक अधूरे प्रयोग की कहानी है।
अपने वादों को हकीकत बनाने का एक निरंतर संघर्ष।
हाँ, और इसका दायरा बहुत बड़ा है। प्री कोलंबियन सभ्यताओं से शुरू होकर 21वीं सदी तक, उपनिवेशीकरण, अमेरिकी संस्थाओं का विकास, पश्चिम की ओर विस्तार, औद्योगिक क्रांति, विश्व शक्ति बनना, नागरिक अधिकारों का संघर्ष, सब कुछ है इसमें।
तो चलिए इस सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। बॉयर ने इसे कई हिस्सों में बांटा है, पहला हिस्सा है दुनियाओं का टकराव 1492 से पहले 1700। यहां वो इस सोच को चुनौती देते हैं कि यूरोपियन लोगों के आने से पहले अमेरिका खाली पड़ा था।
नहीं, बिल्कुल नहीं। वो दिखाते हैं कि वहां पहले से जटिल मूल अमेरिकी सभ्यताएं थीं। फिर जब यूरोपीय आए तो उसे वो कोलंबियन एक्सचेंज कहते हैं, मतलब पौधों, जानवरों, बीमारियों, टेक्नोलॉजी, विचारों का एक जबरदस्त आदान प्रदान हुआ,
जिसके नतीजे मिले जुले रहे होंगे।
हाँ, यूरोप के लिए तो फायदे थे, लेकिन मूल निवासियों के लिए ये बहुत विनाशकारी साबित हुआ। खासकर नई बीमारियों की वजह से उनकी आबादी घट गई, और इसी दौर में अलग अलग कॉलोनियां बनी और गुलामी की शुरुआत हुई। वो आदर्श और यथार्थ का टकराव यहीं से शुरू।
फिर आता है क्रांति की राह पर 1770-1776। यहाँ दिखता है कि क्रांति कोई एक दिन में नहीं हुई। यूरोप में जो एनलाइटनमेंट चल रहा था,
हाँ, जॉन लॉक जैसे विचारक, हाँ, व्यक्तिगत अधिकारों की बात,
बिल्कुल, और अमेरिका में एक धार्मिक जागृति आई, ग्रेट अवेकनिंग। इन सब ने मिलकर स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों के विचारों को हवा दी।
और फिर ब्रिटेन और फ्रांस के बीच लड़ाई हुई, फ्रेंच एंड इंडियन वॉर। उसका खर्चा निकालने के लिए ब्रिटेन ने नए टैक्स लगाए, शुगर एक्ट, स्टैम्प एक्ट,
और उसका हुआ विरोध। बोस्टन टी पार्टी जैसी घटनाएं हुई, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का नारा लगा, और धीरे धीरे बात आजादी की घोषणा तक पहुंच गई।
सही। अगला पड़ाव 1776 से 1815 है, एक नया राष्ट्र बनाना। आजादी की लड़ाई जीतना भी एक चुनौती थी, इसमें फ्रांस की मदद बहुत जरूरी थी। पहला संविधान जो था, आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन, वो काफी कमजोर निकला।
हाँ, फिर 1787 में फिलाडेल्फिया में संवैधानिक सम्मेलन हुआ। वहां जबरदस्त बहसें हुई, किस राज्य को कितना प्रतिनिधित्व मिलेगा, और सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल सवाल, गुलामी का क्या होगा।
बिल्कुल, और वहीं पर वो समझौता हुआ, 3/5 कॉम्प्रोमाइज, जिसमें गुलामों को आबादी गिनते वक्त पूरा नहीं बल्कि 3/5 गिना गया। ये दिखाता है कि देश की नींव रखते समय ही कैसे आदर्शों से समझौता करना पड़ा।
हाँ, समानता के आदर्श और गुलामी की हकीकत के बीच का वो पहला बड़ा समझौता। बाद में बिल ऑफ राइट्स जोड़े गए, मूल अधिकार, फिर पहले राष्ट्रपति वॉशिंगटन, हैमिल्टन की आर्थिक नीतियां, राजनीतिक दलों का उदय, और लुइजियाना खरीद से देश का आकार भी बढ़ा।
जी, फिर आता है गृह युद्ध से पहले का दौर, 1815-1860, जिसे एंटीबेलम पीरियड कहते हैं, विस्तार, सुधार और विभाजन का दौर। एक तरफ थी जैक्सोनियन डेमोक्रेसी,
मतलब आम श्वेत आदमी की पूछ बढ़ी।
हाँ, लेकिन इसी दौर में मूल अमेरिकियों को उनकी जमीनों से बेदखल किया गया, वो दर्दनाक ट्रेल ऑफ टीयर्स, और दूसरी तरफ मार्केट रेवोल्यूशन हुआ,
यानी नहरें, रेल रोड, टेलीग्राफ।
हाँ, इनसे देश जुड़ा, अर्थव्यवस्था बदली, उत्तर में इंडस्ट्री बढ़ी, दक्षिण कपास और गुलामों पर और ज्यादा निर्भर हो गया, और मैनिफेस्ट डेस्टिनी का विचार फैला
कि अमेरिका का हक है पूरे महाद्वीप पर फैलना।
हाँ, इससे टेक्सास, ओरेगन जैसे इलाके जुड़े, लेकिन गुलामी का सवाल और भी ज्यादा विस्फोटक हो गया।
लेकिन इसी दौर में सुधार के आंदोलन भी तो थे, गुलामी खत्म करने की मांग करने वाले बॉलिशनिस्ट्स।
बिल्कुल, और महिलाओं के अधिकारों के लिए भी आवाज उठी। सेनेका फॉल्स कन्वेंशन 1848 एक मील का पत्थर था, ये लोग अमेरिका को उसके वादे याद दिला रहे थे।
और ये सब तनाव बढ़ते बढ़ते पहुंचा गृह युद्ध 1860 से 1870 तक। लिंकन का चुना जाना, दक्षिणी राज्यों का अलग होना, और फिर वो भयानक लड़ाई।
हाँ, और लिंकन की इमैन्सिपेशन प्रोक्लेमेशन, यानी मुक्ति उद्घोषणा, ने युद्ध का मतलब ही बदल दिया। ये सिर्फ देश को जोड़ने की लड़ाई नहीं रही, बल्कि गुलामी को खत्म करने की लड़ाई बन गई।
युद्ध के बाद आया रिकंस्ट्रक्शन का दौर, दक्षिण को दोबारा मुख्यधारा में लाना, देश को फिर से बनाना। संविधान में 3 बड़े संशोधन हुए, 13वां, 14वां, 15वां। गुलामी खत्म हुई, नागरिकता मिली, अश्वेत पुरुषों को वोट का अधिकार मिला। ये तो बहुत बड़ी बात थी, एक सुनहरा मौका था।
हाँ, ये एक क्रांतिकारी मौका था, लेकिन अफसोस कि ये पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाया। दक्षिण में श्वेत वर्चस्ववादियों ने हिंसा का सहारा लिया, जैसे कू क्लक्स क्लैन, और उत्तर में भी धीरे धीरे इसे लागू करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति कम हो गई। 1877 आते आते रिकंस्ट्रक्शन लगभग खत्म हो गया,
और फिर दक्षिण में जिम क्रो का दौर शुरू हुआ, नस्ली अलगावों का।
हाँ, कानूनी तौर पर अलगाव, आदर्शों पर हकीकत एक बार फिर भारी पड़ गई।
इसके बाद आया औद्योगिक तरक्की का दौर, 1877-1920, जिसे गिल्डेड एज और प्रोग्रेसिव एरा कहते हैं। अमेरिका एक बड़ी इंडस्ट्रियल पावर बन गया, बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस बने, कार्नेगी, रॉकेफेलर जैसे अमीर लोग उभरे।
लेकिन इसके साथ ही बड़े पैमाने पर आप्रवासन हुआ, शहरों में गंदगी, गरीबी, मजदूरों का शोषण बढ़ा, राजनीतिक भ्रष्टाचार भी था,
और इसी के जवाब में प्रोग्रेसिव आंदोलन आया।
हाँ, उद्योगों पर नियंत्रण, भ्रष्टाचार पर रोक, लोकतंत्र में सुधार, जैसे महिलाओं को वोट का अधिकार, इसी दौर में मिला, और सामाजिक समस्याओं को हल करने की कोशिशें हुईं। थियोडोर रूजवेल्ट जैसे राष्ट्रपति इसी दौर के थे। और हाँ, स्पैनिश अमेरिकन युद्ध के बाद अमेरिका एक विश्व शक्ति के तौर पर भी उभरा।
फिर 20वीं सदी में दाखिल होते हैं, 1914-1945, विश्व युद्ध, फिर आर्थिक तेजी और फिर महामंदी। पहले विश्व युद्ध में अमेरिका देर से शामिल हुआ, फिर आए रोरिंग ट्वेंटीज।
हाँ, एक तरफ तो जैज, नई उपभोक्ता संस्कृति, आज़ादी का माहौल, लेकिन दूसरी तरफ शराबबंदी, आप्रवासन पर सख्ती जैसे टकराव भी थे।
और फिर 1929 का स्टॉक मार्केट क्रैश और वो भयानक महामंदी,
जिसने अमेरिका को बुरी तरह झकझोर दिया। यहीं पर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट आते हैं और उनका न्यू डील, ये सरकारी दखल का एक बड़ा कार्यक्रम था, राहत, रिकवरी, रिफॉर्म। सोशल सिक्योरिटी जैसी चीजें तभी शुरू हुई। न्यू डील ने सरकार की भूमिका को हमेशा के लिए बदल दिया।
और फिर दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, जिसमें अमेरिका शामिल हुआ। इसने महामंदी को तो खत्म किया, पर दुनिया को भी हमेशा के लिए बदल दिया।
बिल्कुल, युद्ध के बाद का दौर 1945-1968 अमेरिका के लिए बड़ी समृद्धि का समय था, लेकिन साथ ही सोवियत संघ के साथ शीत युद्ध का डर भी था। अंदरूनी तौर पर मकार्थीवाद का दौर आया, कम्युनिस्ट होने के शक में लोगों पर अत्याचार हुए,
और बाहर दुनिया में अमेरिका की कंटेनमेंट पॉलिसी चली। कोरियाई युद्ध हुआ, परमाणु हथियारों की होड़ शुरू हुई,
घर पर देखें तो सबर्ब बने, बेबी बूम हुआ, टीवी आया, उपभोक्ता संस्कृति फैली, लेकिन ये समृद्धि ये सबके लिए बराबर नहीं थी।
और यहीं पर सिविल राइट्स मूवमेंट यानी नागरिक अधिकार आंदोलन ने जोर पकड़ा। ब्राउन वर्सेस बोर्ड ऑफ एजुकेशन का फैसला, मार्टिन लूथर किंग जूनियर अहिंसक प्रदर्शन।
हाँ, और आखिर का 1964 का सिविल राइट्स एक्ट और 1965 का वोटिंग राइट्स एक्ट पास हुआ। अमेरिका फिर से अपने आदर्शों के थोड़ा करीब आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन 1960s का दशक वियतनाम युद्ध की वजह से बहुत उथल पुथल भरा भी रहा, उसने देश को बांट दिया।
और फिर हम आते हैं बिल्कुल हाल के दौर में, 1968 वर्तमान, लगातार उथल पुथल और बदलाव का दौर। 1968 खुद एक बहुत बड़ा मोड़ था, हत्याएं, दंगे, युद्ध का विरोध, फिर निक्सन का उभार, चीन से रिश्ते, लेकिन फिर वाटरगेट स्कैंडल।
70 का दशक आर्थिक मुश्किलों का रहा, स्टैगफ्लेशन। 80 के दशक में रेगन क्रांति आई, टैक्स कटौती, डीरेगुलेशन, फिर शीत युद्ध खत्म हुआ।
90s के दशक में टेक्नोलॉजी से तरक्की आई, लेकिन राजनीतिक ध्रुवीकरण भी बहुत बढ़ गया, क्लिंटन का दौर, फिर 21वीं सदी की शुरुआत 9/11 के हमलों और आतंकवाद के खिलाफ युद्ध से हुई।
हाँ, फिर 2008 का बड़ा आर्थिक संकट, ओबामा का राष्ट्रपति बनना एक ऐतिहासिक घटना थी, लेकिन उसके बाद राजनीतिक कड़वाहट और बढ़ती गई, जो आज भी हम देख रहे हैं। तो कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।
वाकई, ये तो एक बहुत ही लंबी और उतार चढ़ाव वाली जटिल कहानी है। अगर इस पूरी कहानी से कुछ मुख्य बातें, कुछ की थीम्स निकालने हों तो वो क्या होंगी?
मेरे ख्याल से सबसे पहली और सबसे जरूरी थीम तो वही है जिससे हमने शुरू किया था, वो अमेरिकी विरोधाभास, आदर्श बनाम यथार्थ, स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र के ऊंचे वादे और गुलामी, नस्लवाद, असमानता की जमीनी हकीकत। ये तनाव, ये संघर्ष ही पूरी कहानी का इंजन है।
हाँ, ये बात बार बार उभर कर आती है। दूसरी अहम बात शायद ये है कि हम लोग, वी द पीपल की परिभाषा लगातार बदलती रही है, फैलती रही है। संविधान शुरू हुआ तो हम लोग में कौन शामिल थे? ज्यादातर श्वेत संपत्ति वाले पुरुष।
बिल्कुल, और इतिहास इस बात का गवाह है कि कैसे अलग अलग आंदोलनों ने इस परिभाषा को बड़ा करने के लिए लड़ाई लड़ी है। मताधिकार आंदोलन, गुलामी विरोधी आंदोलन, महिला अधिकार, नागरिक अधिकार, LGBTQ+ अधिकार, ये समावेशन की, इंक्लूजन की एक कहानी है।
दूसरा, क्षेत्रीयता बनाम राष्ट्रवाद का तनाव, मतलब राज्यों के अधिकार ज्यादा हों या केंद्र सरकार के, ये बहस तो शुरुआत से ही है, गृह युद्ध का एक बड़ा कारण बनी और आज भी अमेरिकी राजनीति में इसकी गूंज सुनाई देती है।
सही कहा। चौथा, आर्थिक बदलाव और उनके सामाजिक नतीजे, खेती से इंडस्ट्री की तरफ जाना, फिर अब सर्विस और इन्फॉर्मेशन इकोनॉमी, हर बड़े बदलाव ने समाज को गहराई से बदला है। शहर कैसे दिखते हैं, लोग क्या काम करते हैं, परिवार कैसे होते हैं, अमीर गरीब के बीच की खाई, सब कुछ।
और पांचवा, जिस पर बॉयर काफी जोर देते हैं, सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों की ताकत, कि बदलाव अक्सर नीचे से आता है, आम लोगों के संगठित होने से।
हाँ, एबॉलिशनिस्ट मूवमेंट, पॉपुलिस्ट मूवमेंट, लेबर मूवमेंट, सिविल राइट्स मूवमेंट, ये सब दिखाते हैं कि नागरिक जब साथ आते हैं तो वो नीतियां बदलवा सकते हैं, इतिहास का रुख मोड़ सकते हैं।
शायद भारत में भी हम ऐसे उदाहरण देख सकते हैं जहां जन आंदोलनों ने बड़े बदलाव लाए हैं।
हाँ बिल्कुल। अच्छा, इस किताब में कुछ ऐसी बातें या कोट्स भी हैं जो याद रह जाते हैं, बॉयर के कुछ खास विचार?
हाँ कई हैं।
जैसे एक मुख्य विचार ये है कि अमेरिकी लोकतंत्र का प्रयोग हमेशा एक प्रयोग ही रहा है, मतलब इसका नतीजा कभी पक्का नहीं था और इसे सफल बनाने के लिए लगातार कोशिश और बदलते हालात के हिसाब से ढलने की जरूरत है। ये कोई मंजिल नहीं, एक सफर है।
ये महत्वपूर्ण है। और
एक और बात, अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी चुनौती हमेशा उसकी विविधता रही है। इतने अलग अलग तरह के लोगों को एक साथ लाना, सबकी इज्जत करना और फिर भी एक राष्ट्र बनाना, ये लगातार चलने वाली चुनौती है।
विविधता में एकता वाली बात, और ये भी कि अमेरिकी आदर्शों और अमेरिकी हकीकत के बीच की जो खाई है वही राष्ट्रीय शर्म का कारण भी रही है और राष्ट्रीय प्रगति का स्रोत भी। मतलब उसी कमी को देखकर सुधारकों को प्रेरणा मिली कि अमेरिका को अपने वादों पर खरा उतरना चाहिए।
बिल्कुल, कमियों ने ही सुधार की आग जलाई। और एक आखिरी बात, इतिहास को समझने के लिए ये मानना जरूरी है कि अतीत कोई मरा हुआ देश नहीं है, बल्कि वर्तमान के साथ उसकी एक लगातार बातचीत चलती रहती है। अतीत हमें आज के लिए चेतावनी भी देता है और प्रेरणा भी।
ये सब विचार बहुत गहरे हैं, लेकिन सवाल उठता है कि इनका आज की हमारी जिंदगी में क्या इस्तेमाल है, क्या प्रासंगिकता है?
कई तरह से है। सबसे पहले तो ये आज की राजनीतिक बहसों को समझने में मदद करता है, चाहे वो अमेरिका में हो या भारत में। जब हम केंद्र राज्य के रिश्ते या पहचान की राजनीति या आरक्षण जैसे मुद्दों पर बहस सुनते हैं तो इतिहास हमें बताता है कि इनकी जड़ें कितनी पुरानी और जटिल हैं। हम सिर्फ सतह नहीं देखते।
हाँ, एक कॉन्टेक्स्ट मिलता है। और
दूसरा, ये हमें ज्यादा जागरूक और आलोचनात्मक नागरिक बनाता है। हम देशभक्ति के सतही नारों से आगे जाकर सवाल पूछना सीखते हैं। हम उन कहानियों को भी सुनना चाहते हैं जिन्हें अक्सर दबा दिया जाता है।
तीसरा, सामाजिक बदलाव कैसे होता है ये समझने में मदद मिलती है। कौन सी रणनीतियां कामयाब हुई, कौन सी नहीं। अगर कोई आज समाज में कोई सकारात्मक बदलाव लाना चाहता है तो इतिहास से बहुत कुछ सीख सकता है।
हाँ।
चौथा, ये हमें सांस्कृतिक विविधता की अहमियत समझाता है। इतिहास दिखाता है कि अलग अलग संस्कृतियों के मेल से समाज ज्यादा समृद्ध होता है, भले ही उसमें तनाव क्यों न हो।
और पांचवा, ये आर्थिक और तकनीकी बदलावों के पैटर्न पहचानने में मदद कर सकता है। जैसे बॉलियर ने औद्योगीकरण के असर का अध्ययन किया, वैसे ही हम आज ग्लोबलाइजेशन, ऑटोमेशन, एआई के असर को समझने की कोशिश कर सकते हैं। इतिहास हमें पैटर्न दिखाता है।
तो कुल मिलाकर ये किताब सिर्फ अमेरिका के इतिहास के बारे में नहीं है, बल्कि ये किसी भी समाज की जटिलता, उसके विरोधाभासों और उसके विकास को समझने का एक तरीका सिखाती है। मेरे लिए इस पूरी चर्चा से जो सबसे बड़ी बात निकली वो यही है कि कैसे वो बुनियादी टकराव आदर्श और यथार्थ का ही अमरीकी कहानी की मुख्य ताकत रहा है। एक ऐसा संघर्ष जो कभी खत्म नहीं हुआ, आज भी जारी है।
और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण सीख ये है कि इतिहास कितना बहुस्तरीय होता है। कोई एक सीधी सरल कहानी नहीं होती। बॉयर हमें अमेरिका की कहानी की जटिलता और उसके विरोधाभासों को स्वीकार करना सिखाते हैं, और ये याद दिलाते हैं कि ये कहानी, ये प्रयोग अभी जारी है। अतीत को समझे बिना वर्तमान को समझना नामुमकिन है।
बिल्कुल सही। इतिहास जानना सिर्फ अकादमिक दिलचस्पी की बात नहीं है, ये हमें आज बेहतर फैसले लेने और भविष्य को एक बेहतर दिशा देने में मदद करता है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।